नहीं माँ, अभी भी कुछ नहीं बिखरा है। आप चाहें तो सब संभाल सकती हैं। डैड को आज भी आप पर विश्वास है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उन्हें इंतज़ार है आपका। वो आज भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। एक बार चलकर सबको हकीकत बता दीजिए कि आखिर क्या हुआ था आपके साथ, किसने आपके मान को भंग किया। सब ठीक हो जाएगा माँ। अगर ठाकुर साहब इन सब के पीछे हैं तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। आरवी की ये बात सुनकर सावित्री जी ने हैरानी से निगाहें उठाकर उसको देखा। ये आप क्या कह रही हैं बेटा? भाई साहब ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने तो भाभी माना था हमें। उन्होंने हमारे मान को भंग नहीं किया है। वो हमारे गुनाहगार नहीं हैं। वो तो देवकी से प्यार करते हैं। वो कभी हमारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। आरवी को ये सुनकर कितनी खुशी हुई, उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना नामुमकिन था। अंदर ही अंदर खुट रही थी वो ये सोचकर कि उसके अंदर ऐसे इंसान का खून बहता है। पर अब उनके निर्दोष साबित होने पर और ये जानने के बाद कि उन्होंने उसकी माँ को धोखा नहीं दिया, एक सुकून सा मिला था उसको। मन पर से जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया था। पर अब बहुत से सवाल खड़े हो चुके थे उसके सामने, जिसका जवाब सिर्फ सावित्री जी दे सकती थीं, और यही सही मौका था सब जानने का। इस सच्चाई जानने की नीयत से आरवी ने आगे सवाल किया। माँ, अब ठाकुर साहब ने आपके साथ गलत नहीं किया तो और कौन है इन सबके पीछे? क्या हुआ था उस रात? प्लीज़ मुझे सच्चाई बता दीजिए, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, असली गुनाहगार का पता नहीं चल जाता। ना आप पर लगे घटिया इल्ज़ाम मिट सकेंगे और ना ही ठाकुर साहब के साथ इंसाफ हो सकेगा। आपके जाने से जो नफ़रत की आग दोनों परिवारों के बीच पनप गई है, उसमें दोनों परिवार का रिश्ता, उनकी खुशियाँ जलकर राख हो जाएगी। इस नफ़रत में अंधा होकर आपके बेटे न सिर्फ खुद को, बल्कि मुझे और हमारे रिश्ते को भी झुलसा देंगे। सिर्फ आप हैं जो सच्चाई बताकर सब ठीक कर सकती हैं। ठाकुरों के लिए उनके मन में जो नफ़रत और घृणा के भाव हैं, उसे खत्म कर सकती हैं। उन्हें लगता है कि ठाकुर साहब ने आपके साथ मिलकर सब किया और उनसे इसका बदला लेने के लिए वो मुझे तड़पा रहे हैं। मेरी रगों में अमरजीत ठाकुर का खून बहता है, इसलिए उनकी नफ़रत की शिकार बन रही हूँ मैं। सिर्फ आप हैं कि मुझे इस नफ़रत से आज़ादी दिला सकती हैं। आरवी की आँखें भर आईं। वहीं उसकी बात सुनकर सावित्री जी की आँखें छलछला उठीं। उन्होंने नम आँखों से उसे देखा और अपनी काँपती हथेली से उसके चेहरे को छूते हुए भारी गले से बोली, आप आद्या हैं? आप हमारी नन्ही सी गुड़िया आद्या हैं? हाँ माँ, मैं आपकी नन्ही सी गुड़िया आद्या हूँ, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बस आप बचा सकती हैं। सावित्री जी के चेहरे पर अब तनाव झलकने लगा। उन्होंने बेचैनी भरी निगाहों से उसको देखते हुए पूछा, देवकी कैसी है बेटा? कहीं उन्होंने भी तो इस झूठ पर विश्वास नहीं कर लिया? आरवी ने अब अपनी निगाहें झुका ली और भारी गले से बोली, वो अब इस दुनिया में नहीं माँ। सावित्री जी का हाथ उसके गाल से सरक कर ज़मीन पर लुढ़क गया। वो डबडबाई आंखों से स्तब्ध सी उसको देखने लगी। आरवी ने अब निगाहें उठाकर उन्हें देखा और भारी गले से बोली, उन्होंने भी ठाकुर साहब को गलत समझा और जिस रात आप गायब हुईं उसी रात मुझे लेकर वो भी चली गईं। वहां उन्हें एक दंपत्ति मिले जो उन्हें और उनकी बेटी को बेसहारा देखकर अपने घर ले गए। ठाकुर साहब के धोखे का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और दुनिया छोड़कर चली गईं। मुझे उन्हें दंपत्ति ने पाला है। मुझे कुछ वक्त पहले ही अपनी असली पहचान का पता चला है। एक भ्रमजाल फैलाया गया और सबकी जिंदगियां उसमें उलझ कर रह गईं। उस झूठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस धोखे ने सब बर्बाद कर दिया। पहले ही बहुत बुरा हो चुका है इस गलत फहमी की वजह से। बहुत कुछ खो चुका है। अब जो है उन्हें संभालना है। बहुत कोशिशों के बाद आप मिली हैं। प्लीज़ मुझे उस रात का सच बता दीजिए, ताकि असली गुनाहगार को सामने लाकर दोनों परिवार के बीच बनी नफ़रत की दीवार को तोड़ सकूं। अगर आज आपने हिम्मत नहीं की और सच नहीं बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा माँ। आप अपने बेटे को और मैं अपने पति को शायद हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। सावित्री जी ने अब अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को संभालते हुए बोली, अश्विन शेखावत? अश्विन शेखावत है हमारा असली गुनाहगार। कौन अश्विन शेखावत? मैं इन्हें नहीं जानती। अश्विन शेखावत भाई साहब का बचपन का दोस्त था। वो भाई साहब और सुभाष जी साथ साथ ही रहते थे, पर वो सुभाष जी से चिढ़ता था क्योंकि वो उसके और अमरजीत जी के बराबरी के नहीं थे। फिर भी भाई साहब उनसे ज्यादा अहमियत सुभाष जी को देते थे। हमारे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। हम मन ही मन शान के डैड को चाहने लगे थे, पर उस वक्त तक बता नहीं सके थे। फर्स्ट ईयर में थे हम जब अश्विन ने हमें पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया था, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, पर हमने इनकार कर दिया था। उसने कई कोशिशें की पर हर बार हमारा जवाब वही रहा, हमें वो ज़रा भी पसंद नहीं था। उनकी आंखों में ही गंदगी दिखती थी, पर भाई साहब के दोस्त थे तो कुछ कह नहीं पाते थे। जैसे तैसे कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद हम सुभाष जी के साथ अपनी अलग दुनिया बसाकर अपनी गृहस्थी में रम गए। छोटी सी दुनिया थी हमारी और हम खुश थे अपने परिवार के साथ। कई साल बीत गए, हम उसे भूल ही गए थे, पर शायद वो ना हमें भूला और ना ही हमारे इनकार को। उस रात हम सुभाष जी का इंतजार कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमने तुरंत जाकर दरवाजा खोला।
दरवाजे पर सुभाष जी की जगह अश्विन खड़ा मिला। सालों बाद अश्विन को वहां देखकर हम चौंक गए, पर कुछ कह या समझ पाते उससे पहले ही उसने हम पर कुछ छिड़का और हम बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद सावित्री जी ने गहरी सांस छोड़ी और आगे बोली, आधी रात के करीब हमें होश आया, पर तब तक सब बर्बाद हो चुका था। हमारी मर्यादा भंग हो चुकी थी, हमारी आबरू लुट चुकी थी। खुद को उस अवस्था में देखकर हम अपने होश खो बैठे थे। किसी तरह अपनी बिखरी इज्जत समेटकर घर से बाहर निकल गए। जो हमारे साथ हुआ उसके बाद खुद को खत्म कर लेना चाहते थे हम। अंधेरे में सूनी सड़क पर चले जा रहे थे, किसी चीज का होश ही नहीं था हमें। अचानक ही एक ट्रक से टक्कर हो गई हमारी। हमें लगा हमारे मन की मुराद पूरी हो गई और भगवान ने हमें इस घृणित जिंदगी के बोझ से छुटकारा दे दिया, पर हम गलत थे, मरे नहीं थे हम। सावित्री जी ने अब मिस्टर बजाज की तरफ देखते हुए कहा, इन्होंने बचा लिया था हमें। जब हमें होश आया तो उस काली रात को बीते एक महीना हो चुका था। हमारी हिम्मत नहीं हुई वापस जाने की, हमने अपनी जिंदगी खत्म करनी चाही, पर इन्होंने हमें वो भी नहीं करने दिया और अपने बेटे की जिम्मेदारी हम पर डाल दी। हमने खुद को इस चार दीवारी के बीच कैद कर लिया और इंतजार करने लगे अपनी मौत का कि कब हमें इस घुटन भरी जिंदगी से आजादी मिले। सब बताते हुए सावित्री जी ने एक बार फिर उस दर्द को जिया था और वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। आरवी के भी आंसू बहने लगे, उसने उन्हें गले से लगा लिया। आपने उस गुनाह की बहुत लंबी सजा काट ली माँ, जो आपने किया ही नहीं। एक वनवास सीता माता ने काटा था, बिना किसी दोष के, सिर्फ रावण के गुनाह की सजा के रूप में उन्हें अपने पति को छोड़कर जाना पड़ा था। अपने पाक साफ दामन को चरित्रहीन होने और पराये मर्द के साथ रहने के दाग से दूषित होते देखना पड़ा था, और एक वनवास आपने काटा है। अपने पति को अपना सब कुछ मानने के बाद भी किसी और के पाप की सजा के रूप में आपके दामन पर भी कीचड़ उछाला गया। आपको इतने सालों तक अपने पति और बेटे से दूर रहना पड़ा, पर अब इस वनवास का अंत होगा। सजा उसे मिलेगी जिसने गुनाह किया है। मैं आपको वापस आपके घर लेकर चलूंगी। आपकी सच्चाई पर सबको विश्वास करना ही होगा। ना अब आपको अपने पति और बेटे से दूर रहकर पल पल उनकी याद में तड़पना होगा और ना ही अब डैड और मिस्टर मल्होत्रा को आपके बिना रहना होगा। सब गलत फहमियाँ अब दूर होंगी, अब सब ठीक हो जाएगा।
हार्वे की बात सुनकर सावित्री जी घबरा गईं और पीछे हटते हुए बोली, हम वापस वहाँ नहीं जाएंगे बेटा, हम उनका सामना नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे माँ? जब आप गलत नहीं तो क्यों गुमनामी के अंधेरे में अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं? ऐसा क्या गुनाह किया है आपने जो आप डैड से नजरें नहीं मिला सकती? आपको वापस उनके पास लौटना होगा माँ। अगर आपने जाकर सबको सारी हकीकत नहीं बताई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप अपने बेटे को और मैं अपने पति को शायद हमेशा हमेशा के लिए खो दूँ। पहले तो सावित्री जी नहीं मानी, आरवी के बहुत समझाने पर और शान की कसम देने पर वो मानी। आरवी ने मिस्टर और मिसेस बजाज को इतने सालों तक सावित्री जी का ध्यान रखने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा, फिर उनसे इजाज़त लेकर सावित्री जी के साथ वहां से निकल गईं। दोनों अभी आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि अचानक ही उनके कार को तीन चार गाड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया। ड्राइवर ने एकदम से कार रोकी, वरना अभी सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी से उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती। ड्राइवर खतरा भाप गया, उसने तुरंत पीछे मुड़कर आरवी को देखकर कहा, मैडम आप जल्दी से सर को फोन करके लोकेशन बता दीजिए, तब तक मैं इन्हें संभालने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल गया। आरवी थोड़ा घबरा गई थी, उसने तुरंत कार लॉक की और शान को फोन लगाने लगी, पर शान फोन उठा नहीं रहा था। इतने में उन गाड़ियों से काले कपड़े पहने नकाबपोश बाहर निकल आए। ड्राइवर उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका, उन्होंने उसके सर पर रॉड मारी और वो लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। कुछ आदमी गाड़ी के पास आ गए और देखते ही देखते कांच तोड़कर उन्होंने कार अनलॉक कर दी। खतरा भांपते हुए आरवी ने सावित्री जी को बाहर निकाल दिया और भागने को कहा और खुद उन आदमियों से भिड़ गईं। पर एक साधारण सी लड़की उन हट्टे कट्टे आदमियों के आगे वो कितनी देर तक टिक पाती? कुछ ही देर में वो आदमी दोनों को बेहोश करके उन्हें उठाकर ले गए। आरवी का फोन वहीं पड़ा था और गिरने की वजह से ऑफ हो चुका था। दूसरी तरफ शान इस वक्त मीटिंग में बिजी था। फोन साइलेंट पर होने की वजह से उसको आरवी के फोन आने का पता ही नहीं चला। जब वो मीटिंग हॉल से बाहर निकला तब जाकर उसने अपना फोन देखा तो कुछ हैरान हो गया। उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया पर आरवी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शान ने घर पर फोन किया तो वहां भी किसी ने फोन नहीं उठाया। शान की भौहें तन गई, उसने तुरंत ही लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ा लिए। कार तेजी से घर की तरफ दौड़ गई। शान लगातार कभी आरवी तो कभी घर पर फोन लगा रहा था। दोपहर का वक्त था तो सड़क पर ट्रैफिक भी था। शान जिस रोड से जा रहा था वहां गाड़ियों की भीड़ जमा थी, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी।